धवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धिये लद्ध सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यंत भडारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चतुर्थ खंड है उसका नाम है वेदना, और उसमें कृति अनियोग द्वार, जिसको प्राकृत में कदि अनियोग द्वारम लिखा है, ये नवी पुस्तक है। और उसमें पृष्ठ संख्या 88 पर हम आगे 88, ये 88 का विषय समझने के लिए 87 से हम फिर दोबारा देखते हैं। यह सूत्र था कि नमो उग्गतवाणम, यानी उग्र तप जिनों को नमस्कार को। तो ये उसके पहले वो सारे रिद्धि वालों की बात देखी थी अभी हमने, अब यहाँ तप की अपेक्षा बात करेंगे। वहां पढ़ेंगे 22 का अर्थ। उग्र तप रिद्धि धारक दो प्रकार के होते हैं, मिला? हाँ, उग्रोग्र तप रिद्धि धारक यानी उग्र उग्र, और अवस्थित उग्र तप रिद्धि धारक। उनमें जो एक उपवास को करके पारणा कर, दो उपवास करता है, पश्चात फिर पारणा कर, तीन उपवास करता है, इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत तीन गुप्तियों से रक्षित होकर उपवास करने वाला उग्रोग्र तप रिद्धि का धारक है। इसके उपवास और पारणाओं को लाने के लिए सूत्र, वो सूत्र बता रहे हैं। ऊपर जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे, जो 23 नंबर लिखा है ना उसको, कि उत्तर गुणितो गुणिते तु धने पुनरपि अष्टाहते त्रिगुणम आदिम, ये एक बताया। और दूसरा बता रहे कि उत्तर विशेषतम वर्गितम च योज्यानयेन मूलम। नीचे फुटनोट में जा लिखा है उसको कहेंगे। उग्गतवा दो भेदा, उग्गोग्ग अवट्ठिद उग्गतव नामा, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर वही बात है ये। इसके दो भेद है, उग्राग्र और अवस्थित उग्र, अवस्थित उग्र तप। दिखो वासमादिम कादुण एक्का ही एक पचयेणम आमरणंतम जवणम सा होदि उग्गोग्ग तव रिद्धि। दिखो वो मासम आदिम कादुना, यानी एक दिन का उपवास शुरू करके एक एक अधिक वृद्धि से, क्योंकि एक उपवास पारणा, दो उपवास पारणा, तीन उपवास पारणा, ऐसे वृद्धि होते होते कब तक? तो मरण तक, आमरण तक। आमरणंतम यानी मरण तक जो करता है वो उसको कहते हैं उग्रोग्र तपरिद्धि। अब उसकी बात यहाँ समझा रहे 88 पेज पर। ये 24 का कहाँ अर्थ लिखा है? उसका अर्थ नहीं दिया क्या? पढ़ेंगे हमें उसको। तो 23, 24 और 25 को पढ़ना है। और उन्होंने वो तो कुछ अशुद्ध कुछ प्रतीत होता ऐसा लिखा था, पढ़ेंगे। आदिम त्रिगुणम मूलाद अपास्य शेषं चयेन हतलब्धं सैकं दलितं च पदं शेषं तु धनं विनिर्दिष्टं मिश्रधने अष्टगुणे त्रिरूपवर्गेण संयुते मूलं मूलोर्धं च पदं शेषं तु धनं विनिर्दिष्टं। देखो इसको क्या कहते हैं कि किसको क्या कहना, पद किसको कहना, क्या वो सर्वधन किसको कहना, वो बात यहाँ बता रहे। नीचे जो समझा है ना उसी की बात अभी हम पढ़ेंगे। 88 पेज पर जो पहली लाइन से पढ़ते हैं, गोमरसार जीवकांड की टीका में उल्लिखित करण सूत्रों के अनुसार उपवास और पारणा के दिनों की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। टोटल कितने दिन हुए उसकी गणना करते हैं। एक उपवास एक पारणा दो दिन हो गए, फिर दो उपवास और एक पारणा तीन दिन हो गए, पहले दो तीन पांच हो गए, इस तरह से टोटल दिन कितने हुए ये भी टोटल करना है। फिर उसमें उपवास कितने और पारणा कितने इसको भी हमको ढूंढना है। तो उसके लिए वो समझा रहे यहाँ पर। मान लीजिए कि एक उग्रोग्र तपस्वी प्रतिपदा से प्रारंभ कर एकोत्तर वृद्धि क्रम से, एकोत्तर ने एक एक से बढ़ते हुए क्रम से, चतुर्दशी तक निम्न प्रकार से उपवास के लिए उ लिखा और पारणा के लिए पा लिखता है, करता है। उसके लिए प्रतिपदा ने एक का अर्थ होते प्रथमा, प्रतिपदा उपवास किया तो बीज को पारणा किया यानी एक हो गया। अब दूसरी बार उपवास दो हो जाएंगे, तृतीया चतुर्थी को उपवास किया, पंचमी को पारणा किया, फिर तीसरी बार उपवास और एक बढ़ाना, षष्ठी सप्तमी अष्टमी को उपवास किया, नवमी को पारणा किया, चौथी बार उपवास और एक बढ़ेगा तो दसवीं ग्यारस बारस तेरस उपवास किया, चौदस को पारणा किया। अभी इसमें टोटल दिन कितने हुए, उपवास और पारणा मिलकर जो है उसको सर्वधन कहते हैं। तो उसका उत्तर कैसे निकालना टोटल, उसकी बात यहाँ देख रहे हैं। इसका सर्वधन या पदधन यानी टोटल पदों की जो जो संख्या है उसको पदधन कहते हैं। तो सर्वधन या पदधन कैसे निकालना, तो उसके लिए जो सूत्र है, मुह भूमि जोग दले पद गुणि दे पदधनम हो दी। मुह ने पहली बार एक उपास और एक पारणा मिलकर दो थे, और चौथी बार जो है चार उपास और एक पारणा मिलकर पांच दिन थे टोटल। तो मुह ने वो तो पहले दो दिन वो उसको मुह कहा और अंतिम वो पांच दिन उसको भूमि कहा। इन दोनों की टोटल करना, दो अधिक पांच, जोग दले, दले ने उसके आधा करना यानी 2+5 7 हो जाएगा, उसको आधा करना यानी 7 द्वितीयांश हो गए। और उसको पद गुणी दे पद धनम हो दी, पद कितने हैं, तो एक बार दो बार तीन बार चार बार ये पद हुए थे तो उससे गुणा करना, तो 7 द्वितीयांश × 4 तो 14 आ जाए। ये तो पदधन या सर्वधन होता है यानी टोटल दिन कितने हुए, उपवास और पारणा मिलकर टोटल दिन कितने हुए उसकी संख्या हमको मिल गई। इसमें पद संख्या अर्थात कितने बार उपवास और पारणाएं हुई इसकी गणना यानी पहली बार उपवास पारणा, दूसरी बार उपवास पारणा, तीसरी बार, उसमें उपवास तो बढ़ते बढ़ते है, पारणा तो एक एक है, इसकी गणना आदि अंते शुद्धे, ये अलग अलग करण सूत्र बता रहे हैं। आदि अंते शुद्धे वढ्य दे रूव संजुदे ठाणे। आदि अंते शुद्धे का अर्थ होता है, अभी हमारे गणित में अंत में जो चौथी बार किया था तो उसमें चार उपास और एक पारणा पांच दिन थे, वो हो गया अंते, और उसमें से आदि माइनस करना तो जो संख्या आती उसको शुद्ध कहने में आते। आदि अंते शुद्धे उसका अर्थ है अंत में से आदि माइनस करके जो संख्या आई, तो पांच में से दो गए तो हो गए 3। वड्ढी हदे वृद्धि का प्रमाण कितना है, उपवास में एक एक से वृद्धि होती है या दिनों में एक एक से वृद्धि होती थी। पहले उपवास और पारणा मिलके दो दिन थे, फिर 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, इस तरह से। तो वृद्धि का प्रमाण 1 था, तो 5 - 2 × 1 वृद्धि से गुणा करना और रूव संजुदे ठाणे 1 उसमें मिला देना, संयुक्त करना, 1 रूप उसमें मिला देना। तो हमें पदों की संख्या आती है, कितने बार ऐसा हुआ, कितने बार पहले एक उपवास किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, इस तरह से 4 बार हो गए ना, 4 उसके आवर्तन हो गए। तो 4 उसके पदों की संख्या मिली। अब धवलाकार के अनुसार धन में से पद की संख्या घटाने पर टोटल धन ने टोटल कितने दिन तक ये बात चली, तो 14 दिन। उसमें पद यानी कितने बार हो गए, वो तो 4 माइनस किए तो 10 उपवास के दिन आते हैं, और जो पदों की संख्या है उतने पारणा के दिन आते हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, क्योंकि हर एक बार एक एक ही पारणा हुआ और उपवास तो बढ़ते क्रम से हुए है ना। तो उसमें जितना पद है उतने पारणे हुए, और जो टोटल धन है उसमें से पारणा को माइनस करेंगे तो उस उपवास की संख्या आएगी। हम इसकी तरफ देखकर ये भी कह सकते हैं, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास 4 उपवास, 4 का संकलन धन निकालो तो भी 10 आता है, वो भी उपवास के दिन हम कह सकते हैं। उन्होंने कुछ अलग बातें यहाँ लिखी है और उसको उत्तर गुणिते तु धने पुनरपि अष्टाहते त्रिगुणम आदिम, ये कुछ 3 गुना करना, 8 से भाग देना वगैरह वगैरह, तो कहते वो कुछ बराबर नहीं घटित होता है। इसलिए उन्होंने जो जीव कांड में जो सूत्र है ना, करण सूत्र, जीव कांड में तपों की बात नहीं है, ये उपवास आदि की बात नहीं है, गणित की बात है। तो उसमें वो तो गुणस्थान प्ररूपणा में उसमें उन्होंने ये बातें बताई है, शायद वो 53 या अनुत्कृष्टि वगैरह के बारे में वो उन्होंने करण सूत्रों का अर्थ बताया। यहाँ जो पेज 120 लिखा है, परंतु हमारे में वो पेज 120 घटित नहीं हो रहा है, वो शायद 53 नंबर की गाथा, 53 की आगे उसकी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नीचे शंका लिखी ना उसके ऊपर का वाक्य, इन 2 सूत्रों से पद को लेकर धन में से कम करने पर उपवास दिन होते हैं और पारणाएं पद प्रमाण होते, वो पढ़ा गया हमने। शंका, ऐसा होने पर 6 मासों से अधिक उपवास हो जाते हैं, इस कारण यह घटित नहीं होता, यानी उपवास 6 मासों से ऊपर हो जाएंगे ऐसा करने पर। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि घातायुष्क मुनियों के 6 मासों के उपवास का नियम स्वीकार किया गया है। अघातायुष्क मुनियों के नहीं, घातायुष्क किसको कहते हैं, जिनके आयु का घात हो गया वो घातायुष्क कहेंगे। वो तो कदली घात होता है, वो कदली घात होता है, यानी पहले किसी निमित्त से उनकी आयु कम हो गई है। परंतु ये उसको घातायुष को क्यों कहा, अब हाँ देव में नारकियों में कहते हैं, इनमें भी होने में कोई अड़चन तो नहीं है, क्योंकि पल्ले प्रमाण स्थिति बांधी और फिर बाद में कम कर दी, इस तरह से हो सकता है, या पहले भव में मनुष्यायु बांध के कम कर दी थी, उसको भी घातायुष्क कह सकते हैं। परंतु आगे क्या लिखा है उन्हें, देखो, घातायुष्क मुनियों के 6 मासों के उपवास का नियम स्वीकार किया गया है, अघातायुष्क मुनियों के नहीं, क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता। ये अकाल मरण को तो कदली घात कहते हैं, ये तो घातायुष का क्यों कहा, ये प्रश्न है, उसी को घातायुष को कह दिया। कुछ आगे पढ़ते हैं, शंका, अघातायुष का भी 6 मास तक उपवास करने वाले ही होते हैं, क्योंकि इसके आगे संक्लेश भाव उत्पन्न हो जाता है, उसका समाधान। इसके उत्तर में कहते हैं कि संक्लेश सहित और सोपक्रमायुष्क, सोपक्रम मैंने वो कदली घात वाले, वो सोपक्रमायुष्क मुनियों के लिए यह नियम भले ही हो। यानी वो संक्लेश किसको हो जाएगी कि संक्लेश सहित और वो कदली घात से मरण को प्राप्त होने वाले के लिए यह नियम भले ही हो, किंतु संक्लेश भाव से रहित और निरूपक क्रमायुष्क यानी उनका कदली घात से मरण नहीं होता ऐसे जीव और तप के बल से उत्पन्न हुए वीर्यांतराय के क्षोभशम से संयुक्त तथा उसके बल से ही असाता वेदनीय के उदय को मंद कर चुकने वाले, क्योंकि उसके तीव्र उदय से तो क्षुधा वगैरह का वेदना होती है, साधुओं के लिए यह नियम नहीं है क्योंकि उनमें इसका विरोध है। शंका, तप के बल से ऐसी शक्ति किसी महाजन अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के उत्पन्न होती है यह कैसे जाना जाता है? समाधान, इसी सूत्र से यह जाना जाता है क्योंकि 6 मासों से ऊपर उपवास का अभाव मानने पर उग्रोग्र तप नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ उग्रोग्र किसको कहा, एक उपवास दो उपवास करते बढ़ाते बढ़ा मरण तक की बात की। हाँ, दीक्षा के लिए एक उपवास करके पारणा करें, पश्चात एक दिन के अंतर से ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास हो गया, फिर उस षष्ठोपवास से विहार करने वाले के अष्टमोपवास हो गया, देखो षष्ठ उपवास का अर्थ अलग है और अष्ट उपवास वो 6 मास का अलग वो अर्थ अलग है। फिर से देखो, पहले उन्होंने शंका क्या पूछी थी, 6 मासों से वो कैसे ज्यादा हो सकता है, 6 मास तक वो 6 मास का उपवास अलग बात है और षष्ठोपवास की बात अलग है। देखो फिर से पढ़ते हैं, दीक्षा के लिए एक उपवास करके पारणा करे, पश्चात एक दिन के अंतर से ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास हो गया। एक दिन में तो 2 भोजन होते हैं, 3 दिन मिलकर 4 बार उसने भोजन नहीं किया, 6 बार न, 3 दिन कंटिन्यूस में नहीं, एक दिन पारणा है, एक बार खाएगा, तो षष्ठोपवास में उसने 2 उपवास हो गए तो उसको षष्ठोपवास कहते हैं। 2 दिन का लगातार उपवास है ना, पहले धारणा के दिन एक बार खाया, फिर शाम को नहीं, हाँ, फिर 2 उपवास 2 उपवास और वो फिर पारणा के दिन एक, यानी षष्ठोपवास उसको कहते हैं। तो षष्ठोपवास से विहार करने वाले के अष्टोपवास हो गया, इस प्रकार दशम द्वादशम आदि के क्रम से नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित उग्र तप रिद्धि का धारक कहा जाता है। नहीं, एक दिन के अंतर से ऐसा करता है वो, कंटिन्यूस नहीं। देखो देखो, पहले क्या किया था आप समझ नहीं रहे, पहले क्या कहा था, उग्रोग्र तप की क्या बात है सुनो पहले, फिर बाद में बोलो। 87 पेज निकालो, उग्रोग्र तप नीचे के दूसरी लाइन, एक उपवास को करके पारणा कर, 2 उपवास करता है, फिर पारणा कर, 3 उपवास करता है। अब यहां पढ़ना अवस्थित उग्र तप की बात है, पहले में पहले एक उपवास करके पारणा करें, फिर एक दिन के अंतर से ऐसा करते हुए, बीच में अंतर रखा, फिर षष्ठोपवास के विहार करने वाले के अष्टोपमवास हो गया, फिर द्वादशम इस तरह से क्रम से नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित व्रत वृद्धि का धारक कहा जाता है। यह भी तप का अनुष्ठान वीर्यांतराय के क्षौषम से होता है। इन दोनों ही तपों का उत्कृष्ट फल मोक्ष है। अन्य अनुत्कृष्ट फल है। इन उग्रत परिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय। अब जो चरणानुयोग के ग्रंथ है उसमें इसमें और भी उसकी विशेषताएं बताई जाएगी। यहाँ बीच में एक दिन का अंतर रखा है शायद, और वहां पर डायरेक्ट एक उपास एक पारणा, दो उपास एक पारणा इस तरह से चले थे। अब आगे की बात पढ़ते हैं हम। 23 नंबर का सूत्र, 90 पेज। नमो दीप्त तवाणम, दीप्त तप रिद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो। यहाँ अभी सभी तपों की बात है। पहले उग्र तप लिया, अभी दीप्त तप। दीप्ति का कारण होने से तप दीप्त कहा जाता है। दीप्त है तप जिनका, वे दीप्त तप है। चतुर्थ व षष्ठम आदि उपवासों के करने पर जिनका शरीरगत तेज तपजनित लब्धि के महात्म्य से प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान बढ़ता जाता है, वे ऋषि दीप्त तप कहलाते हैं। उनकी केवल दीप्ति ही नहीं बढ़ती है किंतु बल भी बढ़ता है, क्योंकि शरीर बल मांस और रुधिर की वृद्धि के बिना शरीर दीप्ति की वृद्धि हो नहीं सकती। इसीलिए उनके आहार भी नहीं होता, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। यदि कहा जाए कि भूख के दुख को शांत करने के लिए वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भूख के दुख का अभाव है। यानी भूख का दुख नहीं है वहां पर, तो शंकाकार पूछते उसका अभाव कहाँ से जाना जाता है। समाधान, दीप्ति बल और शरीर की वृद्धि से वह जाना जाता है। यानी उपवास करते हुए भी उनका बल बढ़ता है, दीप्ति बढ़ती है, ये कहना चाहते हैं। उन दीप्त तप रिद्धि धारक जिनों को मन वचन और काय से नमस्कार हो। नमो तत्त तवाणम, तप्त तप रिद्धि धारकों को नमस्कार हो। जिस तप के द्वारा मूत्र मल और शुक्रादि तप्त अर्थात दग्ध व विनष्ट कर दिया जाता है, वे उपचार से तप्त तप कहलाते हैं। तप्त हो गया है तप जिनका, वे तप्त तप वाले हैं। जिनके ग्रहण किए हुए चार प्रकार के आहार का तपे हुए लोह पिंड द्वारा आकृष्ट पानी के समान, आपने शायद देखा होगा पानी के बर्तन में तपा हुआ लोहा डाल दो, उसमें पानी ऐसा खींच कर फुर आवाज होकर पानी खींच लेता है वो, इस तरह से ये चारों प्रकार का आहार ग्रहण किया हुआ मुनियों ने। मैंने आहार लेते हैं ना वो, तो उसमें खाद्य भी वस्तु होते, पानी भी लेते हैं इस तरह से, तो उसमें आकृष्ट पानी के समान निहार नहीं होता। वे तप्त तप रिद्धि के धारक जिन है, यानी उन्हें मलमूत्र नहीं होते तप के बल से। इस रिद्धि से सहित तप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। नमो महातवाणम, महातप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। जो अणिमादि आठ गुणों से सहित है, अभी हमने देखा था ना अणिमा गरिमा, तो जलचारणादि आठ प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है। देखो महातपस्वी किसको कहा, देखो वो तो इन्हें विक्रिया रिद्धि जो होता है ना अणिमादि, जो आठ गुणों से सहित है। जलचारणादि आठ प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है, वो जलचारण तंतुचारण वो जंघाचारण वगैरह हमने देखे थे। प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है, दो प्रकार की अक्षीण रिद्धि से युक्त है, वो बताएंगे अभी अक्षीण रिद्धि। सर्वौषधि स्वरूप है। पानी पात्र में, पानी पात्र ने हाथ ही जिनका पात्र है, पानी ने हाथ, वो पानी रसवनी है, पानी का अर्थ होता है हाथ, वो हाथ में ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसे थाली में नहीं खाते ना ही किसी बर्तन में लेते हैं। दिगंबर जो मुनिराज है उनका आहार कभी देखा है आपने? इस तरह से अंजलि बांधकर इसमें फिर वो तो जो दिया जाता है श्रावक आहार देते तो इसे शोध कर फिर उसको खाते हैं, पानी भी इसमें लेकर इस तरह से पीते हैं। इसको कहते हैं पानी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से पलटाने में समर्थ है। नीरस आहार भी अमृत के समान हो जाता है उनके तप के बल से। समस्त इंद्रों से भी अनंत गुणे बल के धारक है। यानी शारीरिक बल भी इतना उनका बढ़ गया है, क्योंकि इंद्रों का बल जो देखो, एक इंद्र कितना है तो पूरा जम्बूद्वीप पलटा सके, इतनी ताकत वाला होता है। तो समस्त इंद्रों के बल से भी अधिक आशीर विष और दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित है। हमने देखा ना, जो उन्होंने मन में सोच लिया, आशीष दिया, तो उसका वो विष के समान भी हो सकता है, अमृत के समान ही उनकी रिद्धि, भले उसका उपयोग नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और दृष्टि विषय यानी वो देखने मात्र से वो भी हो सकता है, वो लब्धियां हैं उनके। तप्त तप रिद्धि से संयुक्त है। अभी हमने देखा था ना, वो सब निहार वगैरह नष्ट हो गया उनका। समस्त विद्याओं का धारक है। मति श्रुत अवधि एवं मन परे ज्ञानों से तीन लोक के व्यापार को जानने वाले, चार ज्ञान के धारक है। वह मुनि महातप रिद्धि का धारक है, कारण कि महत्व के हेतुभूत महत्व, यानी उनकी जो महातप क्यों कहा, महानपना किसमें है, तो महत्व के हेतुभूत तप विशेष को उपचार से महान कहा जाता है। ये तप के द्वारा उनके ये सब बातें प्राप्त हुई, लब्धियां हुई है, तो इसलिए उसको महातप कहते हैं। वह जिनके होता है वे महातप ऋषि है ऐसा सिद्ध है, अथवा बयानवे पेज पर महस अर्थात तेजों का हेतुभूत जो तप है वह उपचार से महा होता है, शेष सुगम है। इन महातप रिद्धि धारकों को रह गया वहां पर, मन वचन व काय से नमस्कार करता हूँ। क्यों, ऐसा कुछ नहीं है हा? यहाँ भी जब चौथा काल था तब थे, समझ में आई बात नहीं, पर्वत में रहते ऐसा नहीं, जो अन्य मति मानते हिमालय में सब रहते ऋषि, वो बात नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ मुनिराज तो जंगलों में ही रहते हैं, परंतु वो पर्वत पे ही रहते ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बात अलग है, वो विद्याधर वहाँ रहते हैं, जैसे हम यहाँ शहरों में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, वैसे विद्याधर कहाँ रहते हैं, उनके श्रेणियों में, उनके नगरों में, उनके नगर होते हैं विद्याधरों के, इसलिए वो पर्वत का नाम आया था। तो वहाँ तो रहने वाले गृहस्थ है, मुनिराज उसको छोड़कर चले जाएंगे कहीं अन्यत्र जंगलों में, वह नगरों में नहीं बसेंगे, कर्मभूमि में कहीं पर भी आ जाएंगे। ये तप करने से हम अन्य मतियों को नजर के सामने मत लेना। हाँ, तो वो कुंभ मेला का दिखाते कहाँ कहाँ से क्या क्या आते, वो उसकी बात नहीं है। नमो घोर तवाणम, यानी तो बेसिकली तो मुनिराज है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनकी विशेष तप की भी बात होती है उसके अंदर, परंतु वहाँ सारे सम्यक्त्व सहित है, वो तो मूल बात है। अंतरंग में इतनी वितरागता है, केवल बाहर में ऐसा करते इतने उपवास करते वो तप नहीं है। गृहस्थ हो या मुनि हो, मुख्य बात तो क्या है, उसके आत्मा का अनुभव होना चाहिए।
वो उपचार पे कहा है?
हाँ वो तो ठीक है ना, अभी बाह्य में उनका वर्णन कैसे करेंगे, बाहर की अपेक्षा ही करेंगे। इतनी अंतरंग में स्थिरता दृढ़ता होगी तो ही ये बाह्य में हो सकता है ना उसके, पर महानता उसकी नहीं, महानता तो अंतरंग में जो स्थिरता है। बाहर से जो कुछ हो रहा है, जो इसके करने के जो विकल्प है, वो तो राग भाव है। फिर भी यहाँ उसकी वर्णन कैसे करेंगे, इसी की अपेक्षा से वर्णन ऐसे भी होते हैं, इस सब व्यवहार में आ जाता है। क्या ऐसा हो जाता नहीं, वो बुद्धिपूर्वक भी होता नहीं, सब बुद्धिपूर्वक चलेगा उनको, एक एक बढ़ाएंगे कि नहीं, नहीं तो भूल गए अभी कितने दिन हो गए, अभी चलो आज पारणा ही कर ले, ऐसे थोड़े होगा। और उनके आसपास जो श्रावकों को भी पता ही होता है ना, वो तो निकले हाँ होगा ही नहीं ना, बुद्धिपूर्वक अंगीकार करते हैं कि वो जब पारणा के दिन वो तो आगे वाले उपवास की निश्चित मन में धरे ना, अभी इसने उपवास करूंगा करके, तो गिने बिना कैसे हो गए, तो गणतरी भूल गए और 12 दिन के बदले 10 दिन में ही उपवास कम किए, 11वें दिन पारणा थोड़े ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने वो तो त्याग किया तो उसके व्यवस्थित, जिसने उपवास, अभी मुनियों की बात छोड़ो, आपने नक्की किया कि कल मैं उपवास करूंगी, तो उपवास करूंगी तो आपको मालूम है ना कि आज कुछ नहीं खाना है पीना है, और दो उपवास करूंगी कहेंगे तो 2 दिन नहीं खाएंगे, फिर उपवास पारणा 3रे दिन करेंगे, ऐसा है। यहाँ पर भी 10-10 दिन के उपवास करने वाले है कि नहीं है, हाँ। यहाँ कहते हाँ 16 दिन के, ये तो बिना पानी के भी यहाँ होते हैं, आज के तारीख में भी करने वाले हैं, बिना पानी के ही करते हैं, वो पानी भी नहीं पीते, जो यहाँ पर दश लक्षण में करेंगे या तो 16 कारण के 16-16 उपवास करते हैं, बिना पानी के करते हैं, ना अन्न ना पानी कुछ नहीं। तो नमो घोर तवाणम, घोर तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। उपवासों में 6 मास का उपवास, अवमोदर्य तपों में 1 ग्रास, वृत्ति परिसंख्याओं में 4 अर्थात 84 में भक्षा की प्रतिज्ञा, रस परित्यागों में उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासनों में वृक व्याघ्र तरक्ष छवल्ल आदि श्वापद अर्थात हिंस्र जीवों से सेवित, सह्य और बिंध्य आदि अटवियों में निवास, यानी सह्य पर्वत और बिंध्य पर्वतों के जो जंगल है जिसमें ऐसे भयानक जानवर रहते हैं हिंस्र, उसमें रहना, यानी क्या क्या वो अंगीकार करते हैं ना स्वयं, काय क्लेशों में जहाँ तीव्र ठंडक हो तथा तीव्र गर्मी पड़ती हो ऐसे प्रदेशों में, तथा खुले आकाश अथवा वृक्षमूल में आतापन योग ग्रहण करना, वृक्षमूल क्योंकि वहां बारिश के दिनों में और ज्यादा पानी बरसता है। इसी प्रकार अभ्यंतर तपों में भी उत्कृष्ट तप की प्ररूपणा करना चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये जो बाह्य तप कौन कौन से, उपवास, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, अब इसमें हाँ बता, उसमें उपवास में क्या है मैक्सिमम कौन सा, क्योंकि घोर तप है ना, ये जो 6 प्रकार के जो बहिरंग तप है उसमें सब में उत्कृष्ट वाली बात लेना, तो मैक्सिमम 6 मास का उपवास वाली बात लेना। अवमोदर्य ने, अवमोदर्य समझते कम खाना, तो मिनिमम कितना, 1 ग्रास खाना, वो अवमोदर्य हुआ। कभी कभी क्या करते हैं अवमोदर्य ने, अभी भोजन से थोड़ा कम खाना और कम खाना, मान लेते ना 3 रोटी खाते होगे तो 2 ही रोटी खाना, 1 ही रोटी, तो कहते 1 ही ग्रास खाना, वो अवमोदर्य में मैक्सिमम लिमिट नीचे की ओर कितने 1 ग्रास खाने के। वृत्ति परिसंख्यान यानी कुछ प्रतिज्ञा, तो 84 में भिक्षा की प्रतिज्ञा, यानी वो वहां खड़े होकर कुछ प्रतिज्ञा लेते होंगे। यहाँ क्या लिखा है कुछ नीचे, चत्वर चत्वर यानी चौराहे में भिक्षा की प्रतिज्ञा, यानी ऐसा कुछ होता होगा कि वहां मिले तो मिल ले लूंगा इस तरह से। रस परित्यागो में यानी उष्ण जलयुक्त तो ओदन का भोजन, ऐसा मिलेगा तो ले लूंगा इस तरह से, ये जो कुछ सोच कर निकलते हैं ना। और विविक्त शय्यासनों में कहाँ रहने का उन्होंने नियम ले लिया, विभयानक अटवियों में। और काय क्लेश में या तो तीव्र ठंडी या तीव्र गर्मी है, वहां जाके वो तप करेंगे। ऐसे ही अभ्यंतर तप में भी उत्कृष्ट तप ले लेना। यह 12 प्रकार ही तप कायर जनों को भयोत्पादक है, इसी कारण घोर तप कहलाता है। वह तप जिनके होता है वे घोर तपरिद्धि के धारक है। 12 प्रकार के तपों की उत्कृष्ट अवस्था में वर्तमान यानी उसमें रहने वाले साधु घोर तप कहलाते हैं, यानी घोर तप करने वाले साधु को भी दुघोर तप कहते हैं। यह तात्पर्य है, यह भी तपजनित रिद्धि ही है, क्योंकि बिना तप के इस प्रकार का आचरण बन नहीं सकता। यानी केवल वो बाह्य में कुछ उन्होंने जिसको कही ना, जैसे वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स करते हैं, तो क्या इसे एक उपवास किया दो, ये कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, अंतरंग में जिसकी स्थिरता होगी उसी के बाह्य में ये बातें हो सकती है। यानी तप किसको कहे, केवल बाह्य उपवास किया वो तप नहीं है, अंतरंग स्थित और आगे जिन शब्द लगाया है ना, तो केवल बाह्य आचरण को नमस्कार नहीं कर रहे यहाँ पर। इन घोर तप ऋषिश्वरों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। नीचे कुछ दिखा देखते हैं। जल सूलप मुहाणम रोगेण चंत पीड़िय अंगावी साहंति दुद्धर तवम जी ऐसा घोर तव रिद्धि। यानी रोग से पीड़ित होते हुए भी दुद्धर तप साहंति यानी करते हैं वो घोर तप रिद्धि। आगे कहते वात पित्त श्लेष्म ये रोगों के नहीं, इसका जो बैलेंस जाता है तो रोग उत्पन्न होता है। सन्निपात समुद्भूत यानी वात पित्त श्लेष्म के सन्निपात से उत्पन्न हुए ऐसे ज्वर कास, अभी रोगों के नाम बता रहे, श्वासाक्षी शूल कुष्ठ प्रमेह आदि, ये सारे रोगों के नाम बताएं। विविध रोग संतापित विविध रोगों से तप्त देहा देह अप्य ऐसा देह होने पर भी अपि अप्रच्युता अनशन काय क्लेश आदि तपसो, यानी वो अनशन आदि अनशन से लेकर काय क्लेश आदि तक तप के द्वारा। भीम स्मशान अद्रि मस्तक गुहा दरी कंदर शून्य ग्रामादिषु प्रदुष्ट यक्ष राक्षस पिचाश प्रवृत्त वेताल रूप विकारेषु परुष शिवारुताप नुपरसिंह व्याघ्रादि व्याल मृग भीषण सु वन या भीषण वन पौर चौरादि प्रचरितेषु अभिरुचित वासाहा घोर तपसा। अभी हमने जो देखा था उसमें उन्होंने रोगों को भी लिया है और गिरी गुहा कंदर शून्य ग्राम आदि में रहते हैं, उसमें दुष्ट यक्ष राक्षस पिशाचों की भी प्रवृत्ति होती है और अनेक प्रकार के विकार होते हैं और ये व्याघ्र व्याल मृग भीषण वन होता है वगैरह वगैरह, उसमें जो तप करते हैं वो घोर तप वाले। अब हम आते हैं 93 पेज पर, 93। नमो घोर परक कमाणम घोर पराक्रम रिद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो। तीनों लोकों का उपसंहार करने, पृथ्वी तल को निगलने, समस्त समुद्र के जल को सुखाने तथा जल अग्नि एवं शिला पर्वत आदि के बरसाने की शक्ति का नाम घोर पराक्रम है।
ओहो,
यानी इतना उनमें पराक्रम प्राप्त हो तो इतनी शक्ति उनमें उत्पन्न हुई। वो करते ऐसी बात नहीं है, इतनी उनमें शक्ति उत्पन्न हुई है। घोर है पराक्रम जिनों का, वे घोर पराक्रम कहलाते हैं, उनको नमस्कार हो, अभिप्राय है। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आने से क्रूर कर्म करने वाले असुरों को नमस्कार करने का प्रसंग नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? ये कोई क्रूर असुर हुए है, वो भी ये सब कर सकते इतना, तो उसको जिन नहीं कहेंगे, ये मुनियों की बात है। क्योंकि इस सूत्र में जिन पद की अनुवृत्ति हो जाती है, और ऐसा उनमें सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है, वो गिराते हैं वैसी तो बात नहीं, क्योंकि वहां तो कितनी हिंसा हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी, सारे षटकायिकों की हिंसा हो जाएगी। नमो घोर गुणानम, घोर गुण जिनों को नमस्कार हो। घोर अर्थात रौद्र है गुण जिनके, वे घोर गुण कहे जाते हैं। शंका, 84 लाख गुणों के घोरत्व कैसे संभव है, उसको घोर क्यों कह दिया? समाधान, घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण उनके घोरत्व संभव है। उन घोर गुण जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से, अनिवृत्ति ने अनुवृत्ति नु करना, नी का नु करना, यहाँ अति प्रसंग भी नहीं आता। ब्रह्मा ये अनिवृत्ति लिखा ना, वो अनुवृत्ति लिखना नीचे से दूसरी तीसरी लाइन में। गुण और पराक्रम के एकत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर घोर पराक्रम लिखा और यहाँ घोर गुण कहा है, क्योंकि गुण से उत्पन्न हुई शक्ति की पराक्रम संज्ञा है, वो उनके गुण है तो वो पराक्रम उत्पन्न हुआ है। नीचे कुछ लिखा है तिलोकपन, निरुवम वड्ढंत तवा तिहुगुण संहरण करण सत्य जुदा। इन्हें निरूपण है, उसकी उपमा नहीं है। वड्ढंत तवा वृद्धि, बढ़ते हुए तप से तीन गुण को संहार करने की शक्ति युक्त होते हैं। कटय सलग्गी पौवय धूमुक्का पहुदी वरी सण समत्था सहसत्ति सयल सायर सलिल उपीलस शोषण समत्था। ऊपर जो बताए ना, समझ समुद्र के जल को सुखाने की वगैरह वगैरह। जायंती जीए मुनिनो घोर परम परक्रम तव तीसा रिद्धि। जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ मूल में उसके त्रिलोक पन्नति के आधार दिए। वहां पर 94 पृष्ठ पर आते हैं। नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, अघोर गुण ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार हो। ब्रह्म का अर्थ 5 व्रत 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप चारित्र, जो 13 होते नहीं है, क्योंकि वह शांति के पोषण का हेतु है। अघोर अर्थात शांत है गुण जिसमें, वह अघोर गुण है। अघोर गुण ब्रह्म का आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जिनके तप के प्रभाव से डमरी, इति, रोग, दुर्भिक्ष, वैर, कलह, वध, बंधन और रोध आदि को शांत करने की शक्ति उत्पन्न हुई है, वे अघोर गुण ब्रह्मचारी है, यह तात्पर्य है। ये उनके तप के कारण आजू बाजू में वो कोई रोग है, कोई दुर्भिक्ष आ जाता है, या कोई जिसमें इति भीति वगैरह जो बताए हैं, जो कुछ पहले भी आई ना, वो 7 प्रकार के जो कुछ भय होते हैं, तो ये सब शांत हो जाते हैं। यानी बाहर के जो वैर हो, कलह आदि सब, वो शांत हो जाते हैं। यानी मुनियों के भी ऐसी बातें पाई जाती है। अभी आपने तो देखा होगा जो वेदी होती है ना, उसके नीचे ऐसा वो एक ही जल के पात्र में से गाय और सिंह या वाघ वो जल पी रहे। एक्चुअली ऐसी बातें होती है समोचरण में, सब अपने जो नेचुरल जो विरोध है, वैर है, वो भूल जाते हैं। ये मुनियों के तप के बल से भी ऐसा होता है किसी किसी मुनि के, तो बाहरी जो वैर कलह वध बंधन आदि सब शांत हो जाते हैं। शंका ये हो गई ना। अघोर गुण ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार हो। नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम, इस सूत्र में अघोर शब्द का अकार क्यों नहीं सुना जाता? यहाँ वहां पूछा था ना नमो घोर, ये तो एस कर दिया ना अघोर के बदले अ, वहां घोर ही नमो घोर ऐसा ही सुनाई देता है। यही पूछना चाहते हैं तो अकार क्यों नहीं सुना जाता? समाधान, संधियुक्त निर्देश होने से उक्त अकार का यहाँ श्रवण नहीं होता है। यानी वो अ अलग से बोला नहीं जाता, लिखते समय उन्होंने वो ऐसा एस करके लिख दिया उसमें। क्योंकि नमः और आगे अ आया तो नमो करके वो अ के बदले एस हो गया उसका। शंका, दृष्टि अमृत और अघोर गुण ब्रह्मचारी में क्या भेद है? ये दृष्टि विषय वाले जो थे ना उसमें दृष्टि अमृत की भी बात है कि उनके निमित्त से बाजू में वो जो सब सारा 12 योजन 9 योजन कुछ उन्होंने डायमेंशन दी थी उसमें से सब रोग वगैरह मिट जाते हैं, तो उसमें और इसमें क्या भेद है? समाधान, उपयोग की सहायता युक्त दृष्टि में स्थित लब्धि से संयुक्त दृष्टि विष कहलाते हैं, किंतु अघोर गुण ब्रह्मचारियों की लब्धियां सर्वांगगत असंख्यात है। इनसे शरीर से स्पृष्ट वायु में भी समस्त उपद्रवों को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है। इस कारण दोनों में भेद क्या कहना चाहते हैं? दृष्टि अमृत कहो या दृष्टि विष की जो बात है तो उसमें तो उन्होंने उपयोग लगाया ना, उन्होंने देखा दृष्टि से, दृष्टि में जो कुछ आ गया उसकी बात है वहां पर, यानी उसमें उनका उपयोग भी लगा तभी उनके वो प्राप्त होती है, इसी उनमें सामर्थ्य है। और ये क्या है, बस उनके तप में वो लीन है तो सहज रूप से हो जाता है, उनको उसमें उपयोग भी नहीं लगता उनका। और सर्वांगगत है, पूरे सर्वांग में वो असंख्यात ऐसी कुछ लब्धियां हैं, यानी शरीर से स्पर्शित वायु में भी वो शक्ति है कि उसके द्वारा भी रोग मिट जाए, केवल रोग नहीं उपद्रव शांत हो जाए। विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियों की प्रवृत्ति लब्धियुक्त जीवों की इच्छा के वश से होती है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कुछ लब्धियुक्त जो है, और उनमें तो दोनों प्रकार से ना, जैसे विषय और अमृत ऐसे दो बात बताई थी, वैसे इसमें भी उल्टा भी होने के लिए सामर्थ्य तो है उसमें, परंतु ऐसे जो प्रवृत्ति की बात है अशुभ लब्धियों में जो प्रवृत्त हो सकेंगे तो वो तो उनके इच्छा के वश से है, परंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकारों से संभव है, यानी बिना उनके उपयोग के वो तो अपने तप में है, वो सहज हो जाती है, या वो उपयोग के द्वारा भी हो सकती है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना भी उक्त लब्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। तीस नंबर, नमो आमो सही पत्ताणम, आमर्षौधि आमर्षौषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो, जिनका आमर्ष अर्थात स्पर्श औषधपने को प्राप्त है, वे आमर्षौषधि प्राप्त हैं। शंका, सूत्र में सकार क्यों नहीं सुना जाता? समाधान, प्राकृत में किन्हीं पदों के आदि मध्य व अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है, इस व्याकरण के नियम से सकार का लोप हो गया है अथवा नहीं सुना जाता। शंका, औषधि में इकार कहां से आया? समाधान, अ आ ई उ, ये 6 स्वर समान है तथा ए और ओ ये 2 संधि अक्षर, ये आठों स्वर बिना विरोध के एक दूसरे के स्थान में आदेश को प्राप्त होते हैं। यानी उनका ये प्राकृत के कुछ नियम बता रहे हैं, एक स्वर के बदले वहाँ दूसरा स्वर आ सकता है, औषध के बदले औषध ही लिख सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। इस व्याकरण के नियम से औषधि यहाँ अकार के स्थान में इकार हो गया है, यानी औषध के बदले औषधि ये शब्द तैयार हुआ। वैसे भी हिंदी वगैरह में औषधि शब्द आता है विशेषात, यद्यपि संस्कृत में औषधि व औषध दोनों शब्द है, तथापि यहाँ केवल औषधि समूह रूप औषध शब्द से अभिप्राय होने के कारण उक्त प्रकार समाधान किया है। संस्कृत में तो वो तो रूढ़िगत ही औषधि शब्द ही आया, वो हिंदी में अभी भी आता है ऐसा है। 96 पृष्ठ। तप के प्रभाव से जिनका स्पर्श समस्त औषधों के स्वरूप को प्राप्त हो गया है, उनकी आमर्ष औषधि प्राप्त ऐसी संज्ञा है। इस प्रकार के आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। इनका अघोर गुण ब्रह्मचारियों में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि इनके केवल व्याधि के नष्ट करने में ही शक्ति देखी जाती है। वो अघोर गुण ब्रह्मचारियों में अन्य भी सब उपद्रव मिटते हैं, बैर मिटता है, विरोध मिटता है, कोई जो पर का कोई आक्रमण हो वो सब मिट जाता है। इसमें तो केवल रोगों के ऊपर जो औषधि के रूप में ही उसकी शक्ति है। नमो खेलो सही पत्ताणम। खेल औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो। श्लेष्म, लार, सिंहाण अर्थात नासिका मल और विप्रुष, विप्रुष आदि की खेल संज्ञा है। जिनका यह खेल औषधित्व को प्राप्त हो गया है, वे खेल औषधि प्राप्त ऋषि है। उन खेल औषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो, यानी उनकी जो थूक है, जो कुछ जो जिसको कहें सिक्रीशंस जिसको कहेंगे हम अलग अलग, वो में औषधि की औषधित्व को प्राप्त हो गया है। नमो जल्लो सही पत्ताणम। जल्ल औषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। बाह्य अंगमल जल्ल कहलाता है, वह तप के प्रभाव से जिनके औषधि पने को प्राप्त हो गया है, वे जल्लोषधि प्राप्त जिन हैं। उन जल्लोषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जल्लोषधि चाहिए ना, जल्लोषधि हुआ एक जगह। नमो विठ्ठो सही पत्ताणम। विष्ठौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विष्ठा शब्द चूंकि देशामर्शक है, अतएव उससे मूत्र, मल और शुक्र का ग्रहण होता है। ये जिनके औषधित्व को प्राप्त हो गए हैं, वे विष्ठौषधि प्राप्त जिन हैं। उन विष्ठौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। नमो सवो सही पत्ताणम। सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। इस सर्वो के ऊपर बिंदी आ गई, वो बिंदी नहीं चाहिए। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि चाहिए, अस्थि नहीं, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फुफ्फुस, करीश, कालेय, मूत्र, पित्त, अंतड़ी, उच्चार अर्थात मल आदि सब जिनके औषधि पने को प्राप्त हो गए हैं, वे सर्वौषधि प्राप्त जिन हैं। यानी उनके पूरे अंग और उनकी जो कुछ बातें, उन सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। नीचे कुछ लिखा है क्या? आगे पढ़ते, यहाँ लोक में जितनी व्याधियां हैं उन सबको स्थापित कर, आमर्ष औषधि, खेल औषधि, जल औषधि, विष्ट औषधि और सर्वौषधि के एक संयोगादि रूप भंगों की नाना काल संबंधी जिनों को आश्रय करके प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि विचित्र चरित्र से लब्धियों की विचित्रता में कोई विरोध नहीं है। अनेक प्रकार का जो तप है उसके कारण अनेक प्रकार की रिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है, यानी सभी रोगों को, व्याधियों को एक बार जो स्थापित करना है। और ये सब अलग अलग जो औषध रिद्धियां हैं, अलग अलग औषध रिद्धियां, उनके उसमें कॉम्बिनेशन से ले लेना सबके। नमो मल बलिनम, मन बल रिद्धि युक्त जिनों को नमस्कार हो। बारह अंगों में निर्दिष्ट त्रिकाल विषयक अनंत अर्थ व व्यंजन पर्यायों से व्याप्त छह द्रव्यों का निरंतर चिंतन करने पर भी खेद को प्राप्त न होना मनबल है। यह मनबल जिनके है वे मनबली कहलाते हैं। यह मनबल भी लब्धि है, क्योंकि विशिष्ट तप के प्रभाव से उत्पन्न होता है। अन्यथा बहुत वर्षों में बुद्धिगोचर होने वाला बारह अंगों का अर्थ एक मुहूर्त में चित्त खेद को कैसे न करेगा, अर्थात करेगा ही। उन मनबली ऋषियों को नमस्कार हो। क्या कहना चाहते हैं? बारह अंग तो कितना उसका अगर स्वरूप देखेंगे तो कितने कितने वो पद है और कितने उसमें सारी बातें हैं, तो बहुत लंबे काल तक भी जो इसको पढ़ता रहे तो उसके बाद वो समझ में आती है बात, इसको पढ़ने में कितना सब समय चला जाएगा। क्योंकि तो एक मुहूर्त में ये सब ज्ञात हो जाता है, फिर भी उनके कोई खेद, कोई थकान, कोई परेशानी नहीं होती। अभी हम एक डेढ़ घंटा पढ़ते हैं और कोई गणित आता है तो कैसा हो जाता है, सिर भारी हो जाता है ना। तो ये खेद नहीं प्राप्त होता उनको। और बारह अंग पूरे कितना बड़ा वो है, सब पूरा पूरा द्वादशांग। नमो वचि बलिनम, वचन बलि ऋषियों को नमस्कार हो। वो वचन नहीं, वचन चाहिए। बारह अंगों का बहुत बार प्रतिवाचन करके भी जो खेद को नहीं प्राप्त होता है वह वचन बलि साधु है। तप के महात्म्य से जिसने वचन बल को उत्पन्न किया है वह वचन बलि है, यह इसका अभिप्राय है। उनको विशुद्ध मन वचन व काय से नमस्कार हो। नमो काय बलिनम, काय बलि ऋषियों को नमस्कार हो। तीन लोगों को हाथ की अंगुली से ऊपर उठाकर अन्यत्र रखने में जो समर्थ है वह काय बलि है। क्या कहा? पूरे तीन लोकों को हाथ की अंगुली पर उठा सके, पूरा लोक, इतनी तो सामर्थ्य है। अब उठाने वाले नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, लोक में रहते हुए वो बात नहीं है, उसकी सामर्थ्य बताना है। काय शक्ति चारित्र विशेष से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके बिना वह पाई नहीं जाती। इन काय बल रिद्धि धारकों को नमस्कार हो। नमो खीर सवीनम, वो वी बराबर लिखना, क्षीर स्रवी जिनों को नमस्कार हो। क्षीर का अर्थ दूध है। विष सहित वस्तु से भी क्षीर को बहाने वाला क्षीर स्रवी कहलाता है। हाथ रूपी पात्र में, वो हाथ रूपी एक शब्द है जिसको पानी पात्र भी कहते हैं, हाथ रूपी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को क्षीर स्वरूप उत्पन्न करने वाली शक्ति भी कारण में कार्य से उपचार से क्षीरस्रवी कही जाती है, यानी उनमें ऐसी सामर्थ्य है। शंका, अन्य रसों में स्थित द्रव्यों का तत्काल ही क्षीर स्वरूप से परिणमन कैसे संभव है? वो तत्काल ही क्षीर स्वरूप से कैसे हो सकेगा? हाँ, कुछ भी हो वो तो क्षीर हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार अमृत समुद्र में गिरे हुए विष का अमृत रूप परिणमन होने में कोई विरोध नहीं है, पूरा अमृत का समुद्र हो और विष की उसमें एक ड्रॉप गिर जाए, वो अमृत रूप होने में कोई, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है। उसी प्रकार पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गप्तियों के समूह से घटित अंजलि पुट में गिरे हुए सब आहारों का क्षीर स्वरूप परिणमन करने में कोई विरोध नहीं है। वह शक्ति जिनके हैं वे क्षीर स्रवी कहलाते हैं, उनको नमस्कार हो। नमो सप्ति सवीनम, सर्पी स्रवी जिनों को नमस्कार हो। सर्पिश शब्द का अर्थ घृत है, घृत यानी घी, जिनके तप के प्रभाव से अंजलि पुट में गिरे हुए सब आहार घृत स्वरूप से परिणमते हैं, वे सर्पी स्रवी जिन हैं, उनको नमस्कार हो। नमो महुसवीनम, मधुस्रवी जिनों को नमस्कार हो। मधु शब्द से गुड़, खांड और शक्कर आदि का ग्रहण किया गया है, क्योंकि मधुर स्वाद के प्रति इनके समानता पाई जाते हैं। वो मधु यानी हनी वाली बात नहीं लेना, जो हाथ में रखे हुए समस्त आहारों को मधु, गुड़, खांड और शक्कर के स्वाद स्वरूप परिणमन कराने में समर्थ है, वे मधुस्रवी जिन है, उनको मन, वचन व काय से नमस्कार हो। नमो अमर सवीनम, अमृत स्रवी जिनों को नमस्कार हो। जिनके हाथ को प्राप्त हुआ आहार अमृत स्वरूप से परिणत होता है, वे अमृत स्रवी जिन है। यहाँ अवस्थित होते हुए जो देवाहार को ग्रहण करने वाले हैं, उन अमृत स्रवी जिनों को नमस्कार हो, ये सूत्र का अर्थ है। क्या क्या देवाहार ऊपर क्या लिखा है? देवाहार भोजिनो, इत्थ अवठिया संतो, अच्छा यहाँ अवस्थित होते हुए देवाहार को ग्रहण करने वाले, ये अभी समझ में आया। देवों का आहार क्या है? अमृत है। मुनिराज तो यहाँ रहते हैं और यहाँ का आहार ग्रहण करते हैं, जो श्रावकों ने दिया है वो भी अमृत में परिवर्तित हो गए, वो देवों का आहार यहाँ रहते हुए लेते हैं, ये उसका अर्थ होता है। यहाँ अवस्थित होते हुए जो देवाहार को ग्रहण करने वाले हैं, यानी रहते यहाँ है, यहाँ का जो आहार दान में गृहस्थों ने दिया हुआ आहार ग्रहण करते हैं, वो अमृत रूप से परिणमित हो जाता है। नमो अक्षीण महानसानम, अक्षीण महानस जिनों को नमस्कार हो। यहाँ चुपची चूंकि अक्षीण महानस शब्द देशामर्शक है, अतएव उससे वसति अक्षीण जिनों का भी ग्रहण होता है। देखो ये तो भोजन संबंधी अक्षीण और वो तो वसति का संबंधी अक्षीण, जिनको भात, घृत व भिगोया हुआ अन्य अन्न स्वयं परोस देने के पश्चात चक्रवर्ती की सेना को भोजन कराने पर भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि तो श्रावक तो अपने लिए जो बताता है और उनमें से मुनियों को भी दान देता है, उसकी भावना होती कि मुनिराज उनका मेरे यहाँ आहार हो जावे, तो उसके पश्चात वो तो कितना बचेगा, उनके घर वालों के लिए जितना बनाए उतना बचेगा, उसमें पूरी चक्रवर्ती की सेना भी जिम जाए वो भी कम नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। क्या? जिनको भात, घृत व भिगोया हुआ अन्न स्वयं परोस देने के पश्चात चक्रवर्ती की सेना को भोजन करना कराने पर भी समाप्त नहीं होता है, वह अक्षीण महानस रिद्धिधारक कहलाता है। जिसके चार हाथ प्रमाण भी गुफा में रहने पर चक्रवर्ती का सैन्य भी उस गुफा में रह सकता है, वह अक्षीणवास रिद्धि धारक है। इतनी सी जगह में इतनी पूरी सेना रह सकती है। उन अक्षीण महानस जिनों को नमस्कार हो। अभी तो हम तो समोसरण में तो देखते हैं कितने जीव वहां पर बैठे हुए हैं, ये मुनियों के हो सकते हैं, तो भगवान के क्या खुद के? शंका, इन शक्तियों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान। इसी सूत्र से उनका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, यानी झूठ नहीं बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं। यानी यहाँ तो इसे आश्चर्य लगता है, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल। नमो लोए सर्व सिद्धाय दनानम, लोक में सब सिद्धायतनों को नमस्कार हो। सब सिद्ध इस वचन से पूर्व में कहे हुए समस्त जिनों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनों से पृथक भूत देश सिद्ध व सर्व सिद्ध पाए नहीं जाते। क्या कहते हैं, जो जिनों को नमस्कार किया है वो तो जो जो क्षेत्र है वो देश सिद्ध और सर्व सिद्ध, यानी उन्हीं में ये सब गृहित हो गए हैं। सब सिद्धों के जो आयतन है वे सर्व सिद्धायतन है। इससे कृत्रिम व अकृत्रिम जिन गृह जिन प्रतिमा, क्या कहा, जिन गृह भी लिए और जिन प्रतिमाएं भी लिए, वो कैसी, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी। अकृत्रिम तो समझते हैं ना, जहां वहां जो अकृत्रिम जिन बिंब और जिन चैत्यालय है, कृत्रिम यानी जो हम आप बनाते हैं वो कृत्रिम है। तथा ईशत प्रागभार, ये ईशत प्रागभार किसका नाम है, आठवीं पृथ्वी ईशत प्रागभार, जिसके सेंटर में सिद्धशिला है। ऊर्जयंत यानी गिरनार पर्वत, चंपापुर व पावानगर आदि क्षेत्रों व निषिधिकाओं का भी ग्रहण करना चाहिए, उन जिनायतनों को नमस्कार हो। वहां पर सिद्ध भगवान उसके ऊपर विराजमान है ना, तो उनको भी नमस्कार कर। यानी उसमें वो जो जहाँ से वो मोक्ष पधारे है उसको भी लिया है। हाँ, जहाँ कल्याणक हुए है उन क्षेत्रों को भी नमस्कार करते हैं। सिद्धायतन आयतन यानी उन स्थान, उन आयतनों को नमस्कार है। उसमें तो ये हमारे आयतन कौन कौन है, तो जिनेंद्र भगवान जो है उनकी मूर्तियां हैं या उनके मंदिर है, और जिन प्रतिमाएं ली है, और जहां से सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है वो आठवीं पृथ्वी नहीं, वो तो सिद्ध क्षेत्र सिद्ध आयतन की। बाकी भी जहां जहां वो तो अकृत्रिम चैत्यालय में तो सभी ले ही लिए, जहां जहां अकृत्रिम जिन चैत्यालय पाए जाते वो सब इसमें आ गए। मैंने मनुष्य लोक में इतने, ऊर्ध्व लोक में इतने हैं, नीचे भवनवासियों में इतने, वो सब उसके अंदर आ गए। व्यंतरों के कितने होता संख्या तो उसमें हो गए। ज्योतिषियों के भी हर बिंब में उनके वो मानस स्तंभ प्रतिमाएं वो सब पाए जाते हैं, उन सबको यहाँ नमस्कार किया है, वो सब सिद्धायतन में आ जाते हैं। ये निषिधिका, निषिधिका शब्द है ना, क्षेत्र और निषिधिकाओं को भी। तो निषिधिका किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि नीचे उसका हिंदी में अर्हतादिकों के वो मुनिराज के समाधि स्थान को निषिधिका या निषिधिका कहते हैं। जहाँ उन्होंने समाधि ग्रहण की है उसको निषिधिका कहते हैं। चातुर्मासिक योग के प्रारंभ काल में तथा ऋतु प्रारंभ में निषिधिका की प्रतिलेखना सर्व साधुओं को नियम से करनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का दर्शन करना तथा उसे पीछे से साफ करना चाहिए। ऐसा यह मुनियों का स्थित कल्प है। वह निषिधिका एकांत प्रदेश में अन्य जनों को दिख न पड़े ऐसे प्रदेश में हो, प्रकाश सहित हो, वह नगर आदिकों से अति दूर न हो न अति समीप भी हो, वह टूटी हुई विध्वस्त की गई ऐसी न हो, वह विस्तीर्ण प्रासक और दृढ़ होनी चाहिए, वह निषिधिका चीटियों से रहित हो, छिद्रों से रहित हो, घिसी हुई न हो, प्रकाश सहित हो, समान भूमि में स्थित हो, निर्जंतुक व बाधा रहित हो, गीली तथा इधर उधर हिलने वाली न हो। यह निषिधी का क्षपक की वसती का से अभी कहाँ क्या होनी चाहिए वगैरह दिशाएं वगैरह बात बताइए, उसको निषिधी का कहते हैं। नहीं, पूर्व में जो हो चुके हैं उन्होंने समाधि ग्रहण की है वगैरह उसको निषिधी का कहते हैं। अभी अन्य हाँ मोक्ष तो गए हैं, जो अरहंत थे वो मोक्ष गए हैं, पर कोई तो मुनिराज है उन्होंने समाधि भी ली है ना, उसको निषिधी का कहते हैं। उन जिनायतों को नमस्कार हो। नमो वर्धमान बुद्धि ऋषिस्, वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो। वर्धमान बुद्ध ऋषिस्, शंका, जबकि वर्धमान भगवान को पूर्व में नमस्कार किया जा चुका है तो फिर यहाँ दोबारा नमस्कार किस लिए किया गया है? समाधान, जिसके समीप धर्म पथ प्राप्त हो उसके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिए तथा उनका सिर आदि पांच अंग एवं काय वचन और मन से नित्य ही सत्कार करना चाहिए। इस आचार्य परंपरागत नियम को बतलाने के लिए पुनः नमस्कार किया गया है। अब शंकाकार पूछते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध भेद से मंगल दो प्रकार का है। आप कहेंगे जिनो शब्द में मंगल कहाँ से आया? तो नमो जिनानम से शुरू हुआ था और वहाँ कहा था यह मंगल के रूप में है, ग्रंथ के आदि में मंगल किया है। तो यहाँ पूछते हैं निबद्ध मंगल है कि अनिबद्ध मंगल है? तो निबद्ध और अनिबद्ध का अर्थ क्या है? जो किसी ने स्वयं अपने मन से उसकी रचना की शब्दों की उसको निबद्ध कहते हैं, अनिबद्ध ने वो अनादि से चला आया उसको अनिबद्ध कहते हैं। तो शंकाकार पूछते हैं निबद्ध और अनिबद्ध भेद से मंगल दो प्रकार का है, उनमें से यह मंगल निबद्ध है अथवा अनिबद्ध है? ये नमो जिनानम वगैरह जो बातें बताई है वो किसी के रचित बातें हैं कि पहले से चली आ रही है? समाधान, यह निबद्ध मंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि कृति आदि 24 संयोग द्वार रूप अवयवों वाले महाकर्म प्रकृति प्रावृत के आदि में गौतम स्वामी ने इसकी प्ररूपना की है और भूतबलि भट्टारक ने वेदना खंड के आदि में मंगल के निमित्त इसे वहां से लाकर स्थापित किया है, अतः इसे निबद्ध मानने में विरोध है। क्या कहना चाहते हैं? ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत है उसके शुरू में जो महाकर्म प्रभृति प्रावृत उसमें क्या है? 24 अनुयोग द्वार है, उसमें कृति आदि 24 अनुयोग द्वार है, उसमें ये सब स्वरूप बताया है। कृति ने मुनियों के करने योग्य जो कार्य बताए हैं, तो मुनि क्या करते हैं? तो भगवान का नमस्कार करेंगे, उनका एक कार्य है ना, तो कहते हैं कि वहाँ वो लिखा है। एक बात, यानी गौतम स्वामी ने उसकी प्ररूपना की है तो गौतम स्वामी ने भी उसका निबद्ध नहीं किया है, वो तो चली आई है परंपरा इसी। और वहीं से भूतबलि भट्टारक ने वेदना खंड के आदि में, अभी हमने जो वेदना खंड हमारा जो शुरू है चौथा, उसके शुरू में ये जो मंगलाचरण रूप से यहाँ इसको ले लिया है, तो ये पहला सूत्र है ना नमो जिनानम, पहले जो हम मंगलाचरण कहते रोज वो तो वीरसेन स्वामी का रचित है, परंतु भूत बलि स्वामी ने क्या लिखा है? नमो जिनानम, वहां से शुरू किया। और वो कहाँ से लिया? वो कृति नाम का जो अनुयोग द्वार है वहां से लिया, महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत्ति में से लिया है, इसलिए वो निबद्ध नहीं है ये कहना चाहते हैं। और वेदना खंड महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत है नहीं क्योंकि अवयव के अवयवी होने का विरोध है, यानी वेदना खंड है वो पूरा महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत नहीं, उसका एक छोटा पार्ट है उसका, और न बुद्ध बलि गौतम ही है, यानी बुद्ध बलि आचार्य गौतम स्वामी नहीं है, क्योंकि विकल श्रुत धारक, ये पूर्ण श्रुत के धारक नहीं है, क्योंकि दर्शन आचार्य भी एक अंग के ज्ञाता थे, उसमें भी कुछ पार्ट था, तो विकल श्रुत धारक और धर्सेनाचार्य के शिष्य भूत बलि को सकल श्रुत के धारक और वर्धमान स्वामी के शिष्य गौतम होने का विरोध है। जो वर्धमान स्वामी ने महावीर स्वामी के जो शिष्य गणधर है वो तो जुदे हैं, वो पूरे श्रुत के धारक थे, उन्होंने द्वादशांग की रचना की थी, और भूत बलि आचार्य तो सकल श्रुत के धारक तो थे नहीं। इसके अतिरिक्त निबद्ध मंगलत्व का हेतुभूत और कोई प्रकार है ही नहीं, अतः यह अनिबद्ध मंगल है, अथवा यह निबद्ध मंगल भी हो सकता है। दूसरा एक विचार प्रस्तुत किया, इसको निबद्ध मंगल भी तो कह सकते हैं। शंकाकार पूछते हैं, वेदना खंडादि स्वरूप खंड ग्रंथ के महाकर्म प्रकृति प्रावृत्पना कैसे संभव है? ये खंड ग्रंथ यानी छोटा ग्रंथ है और महाकर्म प्रकृति प्रावृत तो पूरा है, तो उसको वो कैसे कह सकेंगे? समाधान, नहीं, क्योंकि कृति आदि 24 अनुयोग द्वारों से एकांततः पृथकभूत महाकर्म प्रकृति प्रावृत का अभाव है। यानी महाकर्म प्रकृति प्रावृत में क्या है? 24 अनुयोग द्वार है, उसमें वो कृति नाम का एक अनुयोग द्वार है, यानी उनको जो 24 अनुयोग उनको छोड़कर ये कोई महा प्रकृति प्रवृत्ति नाम की कोई बात है ही नहीं है। शंका, इन अनुयोग द्वारों को कर्म प्रकृति प्रावृत स्वीकार करने पर बहुत प्रावृत होने का प्रसंग आवेगा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कथनचित इष्ट ही है। शंका, महाप्रमाण वाली वेदना के उपसंहार रूप इस वेदना खंड के वेदनापना कैसे संभव है? यानी वो वेदना नाम का जो कोई ओरिजिनल जो है वो तो बहुत बड़ा प्रमाण वाला था और ये तो बहुत छोटा ग्रंथ है, तो इसको वेदना कैसे कह सकेंगे? समाधान, क्योंकि वेदना जो यह इस खंड का चौथे खंड का नाम है वेदना, और उसके मंगलाचरण रूप से यहाँ नमो जिनानम बात शुरू हुई थी। समाधान, नहीं, क्योंकि अवयवों से सर्वथा पृथकभूत अवयवी पाया नहीं जाता, यानी अवयवों से पृथकभूत अवयवी नहीं है, अवयवों का समूह वो अवयव है, वो उससे सर्वथा पृथक नहीं है। जैसे वृक्ष की छाया शाखा, तो शाखा ये अवयव हुआ, तो वृक्ष से पृथक तो नहीं है। इस तरह से यदि कहा जाए, इस प्रकार से बहुत वेदनाओं के मानने का अनिष्ट प्रसंग आवेगा। क्या कहना चाहते हैं? अनेक अवयव होते हैं, तो क्या उसने अवयवी होते हैं? तो कहते नहीं, अवयवी तो एक है, आप अवयव को भी पूरा मानेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारे वेदना हो जाएंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। तो कहते सो भी नहीं है, क्योंकि वैसा इष्ट ही है। अब पूछते हैं, शंका, भूत बलि के गौतमपना कैसे संभव है? प्रतिशंका का अर्थ होते आचार्य शंका वाले को पूछते तो ऐसा क्यों कह रहा है? प्रतिशंका क्या है? उनके गौतम होने से क्या प्रयोजन है? तूने यह गौतम का नाम क्यों लिया? अब शंकाकार कहते हैं, प्रतिशंका का समाधान है शंकाकार का कहना, क्योंकि भूत बलि को गौतम स्वीकार कर किए बिना मंगल के निबद्धता बनी नहीं सकती, क्योंकि तो गौतम गणधर ने इस द्वादशांग की रचना की है, वेदना खंड वगैरह सब उनके लिखे हुए हैं या उनके बनाए हुए हैं, रचित है, तो उन्होंने निबद्ध किया तो कह सकते, क्योंकि यहाँ निबद्ध वाला पक्ष वो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको अगर निबद्ध मानते हैं तो भूतबलि ने लिखा तो गौतम का लिखा हुआ क्यों कह रहे हो? गौतम ने निबद्ध किया है तो भूतबलि तो गौतम नहीं है, ये उनका कहना है। शंका समाधान। अभी यहाँ पर आचार्य उसका समाधान करते हैं, नहीं क्योंकि भूत बलि के खंड ग्रंथ के प्रति कर्तृत्व का अभाव है। ये भूत बलि ने जो खंड ग्रंथ लिखा है, ये षट खंडागम है ना, खंड रूप से जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें उनका अपना कर्तृत्व नहीं है। जो ओरिजिनली जो रचना हुई गणधर के द्वारा, उसके बाद यहाँ जिसको कहेंगे परंपरा से आई हुई, उन्होंने यहाँ लिखी हुई, और दूसरे के द्वारा किए गए ग्रंथाधिकारों के एक देश रूप पूर्वोक्त शब्दार्थ संदर्भ का प्ररूपक कर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि अति प्रसंग दोष आता है। गणधरों ने जो सूत्रों की रचना की थी, उन्होंने उसका तो प्रतिपादन किया है, तो वो उसके कर्ता नहीं हो सकते। अथवा भूत बलि गौतम ही है, क्योंकि दोनों का एक ही अभिप्राय रहा है, जो गौतम का अभिप्राय वही इनका है, तो इसको वैसा ही कह दो, कोई दोष नहीं है। इस प्रकार निबद्ध मंगलत्व भी सिद्ध है। ये मंगल जो है वो निबद्ध है कि अनिबद्ध है, तो पहले भी बताते अनिबद्ध है। अब कहते उसको निबद्ध भी कह सकते हैं, और निबद्ध क्यों कह सकते हैं, उसकी उन्होंने प्ररूपना कर दी। अब यही हम रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सना देत हो। मैं भाई